فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آئیے اس کو پڑھتے ہیں, پہلے لفظوں کے ساتھ خلاصہ پھر اس میں سے عمل کی باتیں. سورۃ ہود آیت 112. فاستقم کما امرت ومن تاب معک, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈٹے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا. اس لفظ کو ہائی لائٹ کیجیے, یہ بار بار سامنے آئے گا, کما امرتا. دین اصل وہی ہے جو کما امرتا, نماز اصل وہی ہے جو کما امرتا, روزہ اصل میں وہی ہے جو کما امرتا, اخلاق وہی ہے جو کما امرتا, دین کی اصل وہ ہے جو اللہ نے حکم دے دیا. مجھے آپ کو اس سے زیادہ پوچھنے کی ضرورت نہیں, نمازیں 5 کیوں ہیں, کما امرتا, روزے 30 کیوں ہیں, کما امرتا, حج 1 دفعہ کیوں فرض ہے, کما امرتا, طلاق 3 نشستوں میں کیوں ہوتی ہے, کما امرتا, حج میں 7 ہی پھیرے کیوں ہیں طواف کے, کما امرتا. یہ کما امرتا کو چھوڑنے سے ہی ساری تباہیاں ہوئیں. بمن تاب معک, اور وہ بھی جنہوں نے توبہ کی آپ کے ساتھ, یعنی یہ حکم فاستقم کا آپ کو بھی ہے, اور گناہوں کی زندگی چھوڑ کر توبہ کر کے ایمان لانے والے سارے ساتھیوں کے لیے. کیا پتہ چلا کہ وہ لوگ بھی صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں جو شرک سے باز آئے ہیں, جنہوں نے کفر کو چھوڑا اور آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں. چلیے, ایک تو حکم ہو گیا فاستقم, اس کو آپ کیا کہیں گے گرامر کی زبان میں, ڈو حکم فعل امر, اب ایک ڈونٹ آ رہا ہے, ولا تطغو, اور تم لوگ حد سے تجاوز نہ کرو. تجاوز کیا ہوتا ہے, تغی طغیانی, حدوں سے نکلنا. تجاوز کی ایک شکل کیا ہے کہ منکرین حق پر جلد عذاب لانے کی خواہش کرنا, یا یہ بھی کہ چاروں طرف سے ان لوگوں کی مخالفت کے سبب کسی لمحے غصے میں آ جانا, حلم اور بردباری کا دامن چھوڑ دینا, یعنی زیادتی نہ کرو, یعنی جو کام اللہ نے کرنا ہے وہ تم اپنے اوپر نہ لو, کیونکہ انہو بما تعملون بصیر, یقیناً وہ تم لوگوں کے سب اعمال دیکھ رہا. تم جمے رہو اپنے کام پہ, سرکشی نہ کرو, دوسروں کی طرف نہ جاؤ, اللہ پہ معاملہ ڈال دو. تیسری بات جو ڈونٹس میں ہی ہے اگلی آیت میں, ولا ترکنوا الی الذین ظلموا, اور کوئی جھکاؤ پیدا نہ کرنا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا. کیا مطلب, یہ خالص حق اور باطل کی کشمکش ہے, اس میں کہیں کوئی رشتہ داری کا معاملہ, کوئی پرانے تعلق, کوئی قبیلے برادری کی محبت, ایسا کوئی عمل تم لوگوں کو کسی لمحے بھی ان کی طرف جھکنے پر مائل نہ کرے. اگر جھک گئے, یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں, برادری, خاندان, تعلق داریاں, رشتہ داریاں, مروت میں پھنس گئے, تو یاد رکھنا, فتمسکم النار, اگر ایسا ہو گیا تو تمہیں آگ پکڑ لے گی. اور پھر کیا ہوگا, وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون, پھر تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہوں گے, پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. یہ ہے وہ آیت جس کے اوپر ذرا سا غور کریں, کیا کیا عقدے کھلتے ہیں. اور میں جس نے سورت شروع کی تھی نا, اس دن سے منتظر تھی اس آیت کو پڑھانے اور پڑھنے کی. آج اصل میں کمی اسی کی ہے, باقی تو نیکیاں بڑی ہیں, رونقیں, شوق والی, جذبوں والی, دھوم دھام والی, کھانے پینے والی, خوشبوؤں والی نیکیاں بڑی ہیں. ہر بندے کے دل میں نیکی کی طلب ہے اور وہ کرتا بھی ہے, نہیں کرے گا تو مر جائے گا روحانی طور پہ. جیسے سانس کوئی نہ لے, آکسیجن نہ لے, جی مجھے نہیں ضرورت آکسیجن کی, تو 2-4 منٹ دیئے گا, اس کے بعد سانس اکھڑے گی اور ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ جن حالات میں آپ دین کا کام کر رہے ہیں, پھر میں آپ کو تسلی دیتا ہوں کہ آپ کھڑے رہیے. تین باتیں آپ دیکھیے, اور تینوں باتوں میں رابطہ ہے. پیچھے دشمنوں کی مخالفتوں کا تذکرہ پڑا, کیسے دشمن دشمنیوں پہ اتر آئے, फिर बीच में आपको तारीख का आईना दिखाया गया कि कोई बात नहीं है नबी, गम ना कीजिए, अगर इनको नहीं समझ आ रहा आपको तो पता है कि अल्लाह ने पिछले नबियों की कैसे मदद की। फिर आगे मुस्तकबिल का आईना रखा, क़यामत के जन्नत और जहन्नुम के मनाजिर, कि चले इनको इसमें ही अपनी शक्लें दिख जाएं कि हमारा मुस्तकबिल बड़ा बुरा होने वाला है, और आपको कहा आप दिल ना मैला करें। आपकी दावत ऐसी नहीं है जो बड़ी मुश्किल है, आपकी हर बात अक्ल और इंसाफ के तराजू में तुली हुई है, आपकी हर दलील मुहकम है, और आपका लबो लहजा यकीन के साथ मिठास वाला है, खैर ख्वाही है, और आपका किरदार एक बेना है। कहने की तो ज़रूरत नहीं, आप तो करके दिखाते हैं, आप कभी कोई गलत बात नहीं कहते। इसके बावजूद क्यों मुखालिफिन आप में कीड़े डालते हैं, क्यों आपके ऊपर बातें करते हैं, तबसरे करते हैं, क्यों इख्तलाफ के रास्ते खोलते हैं? इसकी वजह क्या? इनकी असल दुश्मनी हक से है, और हक पे जमने का नाम ही इस्तकामत है। याद रखिए ये रवैया हर दौर से रहा कि लोगों ने दीन की बात करने वालों के कदम उखेड़ने चाहे। मुझे किसी ने अभी रिसेंटली ये वाक्य ऐसे ही सुनाया, किस्सा है ये वाक्य, कि एक मौलवी साहब थे तो किसी मस्जिद में नॉमिनेट किए गए जैसे इमामत के मनसब पे। अब क्या हुआ, हर आए दिन कोई मसला, इख्तलाफ, एतराज़। जब बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गई तो वो पहले इमाम साहब भी थे, उनकी बात किसी दिन छिड़ गई। किसी ने आके कहा कि ये बात तो बताएं, ये मस्जिद तो इतने दिन से बनी हुई है, आज तक तो इधर इख्तलाफ नहीं को उठा, कुछ होश ही नहीं उठा, ये अब क्या हो गया? तो उन्होंने कहा इसकी वजह ये कि आज तक इधर से हक नहीं पेश किया गया था। आप हक ना पेश करें, कोई आपसे इख्तलाफ नहीं करेगा। जो आप करें वो भी ठीक, जो आप करती हैं वो भी ठीक, जो आप कहती हैं वो भी ठीक, जो आपका दिल है वो भी ठीक, आप जब आना चाहें आ जाएं, आप जब उठ के जाना चाहें चले जाएं, किसको मुझसे इख्तलाफ होगा? इख्तलाफ कब होगा? जब कहा जाएगा सबको पूरे टाइम पर आना है, पूरे पे जाना है। याद रखिए इस्तकामत ही के सारे खेल हैं कि जिसकी वजह से लोग दीन पर जम नहीं पाते। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने खोलूंगी ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। अल्लाह करे कि आपका दिल इससे खुश हो, किसी और से खुश होता है तो मुझे वो बता दे, मैं वो दे देती हूँ आपको। लेकिन हकीकत क्या है, इस्तकामत क्या होती है, थोड़ी सी इस पर बात करूँगी। इस्तकामत के मानी है सीधा खड़ा होना, ज़रा सा भी झुकाव ना हो, काम यकीमू, इसी से लफ्ज़ क़यामत भी, और मैंने एक लेक्चर भी इस पर दिया हुआ है, इस्तकामत में क़यामत है। क्योंकि क़यामत ही आ जाती है उस बंदे की ज़िंदगी में जो जम जाता है किसी बात के ऊपर। खैर, झुकाव से बचना। अब ये काम मुश्किल है, आसान नहीं है। आप देखिए किसी लोहे पत्थर वगैरह को सीधा खड़ा करना हो, कोई इंजीनियर आएगा एक दफ़ा उसको सीधा कर देगा, इधर से देख उधर से देख। कभी आपने घर बनते देखे हो पाकिस्तान में, वो हाथों में कई औजार होते हैं सीधा, क्योंकि ज़रा सा भी टेढ़ा हो गया तो दीवार टेढ़ी, पता नहीं लग रहा होता, लेकिन जब ऊपर छत डालेंगे पता लग जाएगा कि ऊपर कोने में एक सुराख रह गया है। क्या पता चला, जिस तरह किसी मादी चीज़ को सीधा कायम करना बहुत मुश्किल होता है, इसी तरह दीन की दावत में अल्लाह के हुक्म पे, जिसको यहाँ क्या बोला गया, आप बोले कमा उमिरता, कमा उमिरता पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है। और आपको नहीं ये बात समझ आएगी, ये मेरी बात हर उसको समझ आएगी जो दीन की दावत देता है, जो पढ़ाता है, जो टीचर है, जो मुफ्ती है। इतना खफीफ सा, इतना बारीक, इतना मैं कह सकती हूँ इनविजिबल सा इंक्लाइनेशन आ जाता है बंदे के अंदर, अपनी मर्ज़ी बता दो, ज़रा शिद्दत दे दो, ज़रा सा बुशी करना है ना, ज़रा सा डांट दो, कोई नहीं। तो लिखिए अपने ज़ाती मेलान को पीछे रख के कमा उमिरता पे अमल करना, ये है इस्तकामत। और सबसे मुश्किल खड़ा होना किस चीज़ का होता है, आप सोचिए। देखिए आपको मिसाल देती हूँ कि ये टेबल है, इस रूम में रखा हुआ है ना, ये जब से बना होगा या जब से आपके पास आया आपने इसको इधर रखा, आसान है ना। अब यहाँ से कोई मेज़ मूव किया जाता हो, बाहर गए तो उसके ऊपर कुछ चीज़ें रखी, उसकी टांगें खोली, सफ़र में ले गए, समझ गए ना, मूविंग कैफियत में, यानी किसी मुतहरिक चीज़ का हर वक्त उस हाल में कायम रहना बहुत मुश्किल होता है। चीज़ अपनी जगह पड़ी रहे ठीक है, आप देखें अगर दो तीन दफ़ा आप घर शिफ्ट करें ना, आपके फर्नीचर में से आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। दीन का काम स्टेबल नहीं काम है, इसमें हरकत है। जब बंदा दुनिया में चलता है फिरता है फिर इस्तकामत मुश्किल होती है। आप अपने घर बैठे हुए हैं, 5 वक्त की नमाज़, आप घड़ी देख रहे हैं कि अभी 5 मिनट रह गए, आप वज़ू करके बैठे हैं, बहुत आसान है। बट आप दुनिया में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फिर अज़ान के साथ नमाज़ पढ़ना बहुत मुश्किल है। और याद रखिए कि हर काम और हर हाल में इस्तकामत लाजमी है। लफ्ज़ छोटा सा है लेकिन मफहूम बहुत बड़ा है। इंसान अपने अकायद में, इबादात में, मामलात में, अखलाक में, माशरत में, मीशत में, हर चीज़ के अंदर अगर अल्लाह की कायम करदा हदूद के अंदर रहेगा तो वो फस्तकिम पे अमल कर रहा है, कमाओ मिर्ता पे अमल कर रहा है। किसी चीज़ में, किसी भी खाने में एक तरफ झुकाव हो गया तो वला तत्गो। अब आप देखिए कि दुनिया में जितनी गुमराहियाँ और अमली खराबियाँ आती हैं ना, वो सब इस्तकामत से हटने का नाम है। मसलन देखिए, आप अभी मैंने 4 लफ्ज़ बोले ना, पहली बात है अकायद। अकायद में जब इस्तकामत नहीं होती ना तो बिदअत शुरू हो जाती है और कुफर और शिर्क तक पहुंच जाती है। आप अल्लाह की तौहीद और उसकी सिफात के मुतलिक जो मोतदिल सा बैलेंस्ड रवैया है ना, उसको छोड़ें तो नबी सल्लम की ज़ात में गलूफ शुरू हो जाएगा, अफरात और तफरीत कमी बेशी होगी, चाहे ये करने वाले नेक नीयत लोग हों। बात वाजह हो रही है? नबी सल्लम के मुकाम पे इस्तकामत है। आप ठीक है जैसे वो थे, अब्दुहू व रसूलुहू, ठीक है, आप उसको ज़रा इधर ढोलें उधर करें, अफरात और तफरीत इस्तकामत से चले गए। नबियों से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है, बट इसी मोहब्बत में जब हद से बाहर गुजर के वो काम करने लगते हैं जो इजाज़त नहीं, इस्तकामत से निकल गए, गुस्ताखी हो गई, तो क्या पता चला चीज़ों को उसकी असल पे रखना। याद रखे गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन में अल्लाह ने जिन दो ग्रोहों की तरफ इशारा किया था उनका कसूर ही ये था। यहूद ने क्या किया? एक तरफ झुके, ज़्यादा ही सख्त हो गए। नसारा ने क्या किया? ज़्यादा ही नरम हो गए। एक ने इबादत और तकर्रुब इलल्लाह के लिए जो तरीके अख्तियार किए वो एक असल से हटे, दूसरे की दूसरी तरफ से। तो याद रखिए कि इंसान को इस्तकामत से गिरा देती हैं ये सारी मनमानियाँ, और फिर इंसान बहुत नेक नीयत होने के बावजूद ये काम करता है और कहता है मैं बड़ा खुश हूँ। जिसको अल्लाह को राज़ी करने का काम समझता है ना, वो उसकी नाराज़गी का काम होता है। इसीलिए नबी सल्लम ने फरमाया कि इन्ना शर्रुल उमूर मुख्दसातुहा व कुल्लु मुख्दसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। मुहदस कहा जाता है बिदत को, मना किया, ये गुमराही है। जो काम करना है अल्लाह और उसके रसूल के तरीके से, कमा उमिरता की रोशनी में करेंगे, काम इबादत है, उससे हट जाएंगे वही काम ख़राब हो जाएगा। फिर इसी तरह तीसरी चीज़ क्या होती है? मामलात। अब यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, फला तत्गऊ को आगे देखिएगा। खाली अकायद और इबादात में इस्तकामत निस्बतन आसान है, ये बड़ी काबिल गौर बात है आप सब के फ़ायदे की। अकीदे में एक अल्लाह पे जमना काफ़ी हद तक पॉसिबल है, जैसे हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई चाहिए ही नहीं तेरे सिवा, है ही तू, राजिक तू, मालिक तू, खालिक तू, ठीक है, क्योंकि सिर्फ अल्लाह की ज़ात है ना बीच में। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी हमारा दिल जमा हुआ है कि आपके बाद हमें किसी की नहीं ज़रूरत, हम बाकियों को इमाम तो मानेंगे, हम बाकियों को नेक तो मानेंगे, हम रहबर मानेंगे, लेकिन वो मुकाम जो एक नबी और रसूल का था वो नहीं देंगे, ख़त्म हो गई। सबसे मुश्किल बैलेंस मामलात और अखलाक का और मईशत और माशरत का, ये बड़ा मुश्किल है। जब तक मोतदिल बैलेंस तरीके से आप अपनी घरदारी और दीनदारी, दुनियादारी दीनदारी, अपने दीन के तकाजे और दुनिया के तकाजों को बैलेंस में नहीं रखेंगे, इस्तकामत पे नहीं रहेंगे, ये वो चीज़ है जो सबसे मुश्किल है, जिसको लोग कहते हैं मैं हैंडल नहीं कर पा रही। आप में से भी कई लोगों को कई मकामात पे ये फील हुआ होगा कि मैं बेबस हो गई हूँ, ना मैं अपने पढ़ने पढ़ाने को फोकस कर पा रही हूँ, ना मेरे घर वाले मुझसे खुश हैं। वहाँ क्या क्या है? फला तत्गो, झुकना नहीं। देखिए आप सीधे बैठे हैं ना, गाड़ी में आप सफ़र करते हैं, मुझे बहुत करना पड़ता है इसलिए मैं फील करती हूँ, आप नॉर्मल सीधे बैठे हैं, बहुत झुके हुए नहीं, बहुत दबे हुए नहीं, जगह तंग नहीं, 5-6 घंटे में भी आप नहीं थकेंगे। और कहीं घुसड़े हों गाड़ी में, आप देखें जैसे हमारे मुल्क में 5-6 लोग पीछे बैठाते हैं, तो जब वो निकलते हैं तो वो एक एक को सीधा करना पड़ता है, कोई कुबड़ा हो चुका है तो किसी का पाँव मुड़ चुका है, सीधे चलेंगे ना देर तक चलेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में यही किया हुआ है, मैंने कभी दीन के लिए दुनिया नहीं छोड़ी और दुनिया के लिए दीन को सवार नहीं किया, मैंने अपने कुकले बाद को पीछे नहीं किया, मेरे शौहर को उस वक्त ज़रूरत है तो मैंने उस वक्त लंबी नमाज नहीं पढ़ी, और अगर मेरी नमाज कज़ा हो रही है तो मैंने उस वक्त उनकी खुशी के लिए खाना नहीं बनाया। जो बंदा दीन दुनिया को बैलेंस और उसके सही रवैये के साथ लेके जाएगा, वो ही सिर्फ इस्तकामत पे आएगा। कुछ लोग दीन के मामले में एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, एक जोश आता है, उबाल आता है। जैसे कुछ लोग हैं ना, नया नया जब कुरान आता है, कभी आप मुझसे तो पूछे मेरा फ़ोन क्या हुआ। मैं बहुत सारी चीज़ें तो सिर्फ शेयर ही नहीं करती आप लोगों के साथ ग्रुप्स में भी, कि मुझे ऐसे लगता है ये खुद नुमाई ना हो जाए, हालांकि मेरे जहन में वो एक तहदीस नेमत होती है कि लोग इस किताब से जुड़कर फिर आपको समझने क्या लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ, वही चीज़ दूर तक जाएगी जो बैलेंस्ड होगी। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत सर्दी लग रही है, आप या कांपेंगे या पसीने आएंगे, रूम टेम्परेचर में भाग भाग के काम करेंगे। इस दीन को अपना लाइफस्टाइल बनाएं। अब इसको एक और एंगल से समझिए, फला तत्गऊ में रमज़ान आता है, सारा कुछ बंद। चलो जी, मस्जिदें, तस्बियां, नमाजें, ईद की रात तक के बस अब जमेंगे। ईद के दिन ही हो सकता है एक दो नमाज इधर उधर हो गई। क्यों? आपने रमज़ान को बना लिया अपने लिए तूफान। बस पीछे बच्चों चुप चुप रमज़ान, मियाँ चुप चुप रमज़ान। अब आप अपने जुम्मे में बड़ी नेकियाँ कर रहे हैं, ईद के बाद वो ना कहे बस जी ख़त्म हो गया आपका कोर्स रमज़ान का, वापस आ जाए। नहीं समझे? हज पे गए, उमरे पे गए, या फिर कोई दुख सुख पड़ गया, वो नेकी नहीं होती। नेकी वो नेकी है जो आपका हिस्सा बनी हुई है। मैं एक छोटी लेडीज़ वाली मिसाल देती हूँ, मुझे किसी कबल के कमेंट भी कुछ दिन पहले आया कि आप सारी मिसालें औरतों की क्यों देती हैं। मैसेज था मेरे पास किसी एडमिन का कि किसी ने कहा कि आप कुछ मिसालें मर्दों के लिए भी दिया करें, क्योंकि आप हमेशा औरतों की देती हैं। तो सीधी सी बात है, मेरे आगे हैं ही औरतें। आप देखिए कि आप मेकअप करते हैं ना, कितना अच्छा लगते हैं आप, और जब आप बन के संवर के फौरन निकलते हैं, कैसा चेहरा लगता है? क्या आपके मेकअप में इस्तकामत रहती है 5-6 घंटे के बाद? स्माइल दिया, वो सारी बेस की चिपड़ियां बन गई, दुल्हन जहां से हंसी बोली वहां ऐसे लाइनें पड़ गई। नहीं हुआ? खाना खा लिया तो लिपस्टिक घूम गई, लोगों की लिपस्टिक में इस्तकामत ही नहीं होती, ऊपर से कर गए। और कभी आंसू धो गिरे तो वो सारा काजल और वो जो आई मेकअप है वो बह गया, क्योंकि इस्तकामत नहीं रही। किस मेकअप में इस्तकामत है आप बताएं? जो आपके अंदर की खूबसूरती है, फेस ग्लो कर रहा है। अब आप कहेंगे वक्ती तौर पे हम खुश होने के लिए अपने आप को सजा सकते हैं कि डिस्टेंस प्लीज, थोड़ी दूर से देखो तो हम अच्छे लग रहे हैं, करीब से देखोगे तो भूत लगेंगे, ऐसे ही है ना। अब आप मुझे बताइए कि निबती कौन सी है साथ, जो अंदर की सेहत है। ऊपर से रंग रोगन भी लगा लें, चमक भी आ जाए, पर वो जो अंदर की चमक, सेहत, हेल्थ, जिसको हेल्थ कहते हैं, आप जितने का मेकअप करा रहे हैं उतने की गाजरें और ले आए और फ्रूट खा लें, तो हो सकता है आपके अंदर ज्यादा ताकत रहे। मुझे जो बात समझ आ रही है, मैं आपको भी समझा नहीं पा रही, सॉरी। इस दीन को अपनी जात में घुला लें, ये आपका लाइफस्टाइल बनेगा ना, जिस दिन फिर मजा आएगा। मसलन आपके और मेरे ऊपर, हम इधर आते हैं सीखने के लिए, कितना वक्त है हमारे पास? बहुत भी लगा लें तो 4 घंटे, पीछे कितने हैं? 20। ये 4 घंटों में इस्तकामत क्यों नहीं आती? फला तत्गो। अगर आप अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों, अपनी दोस्तों को ये यकीन दिला चुके हैं ना कि आपकी सेहत के लिए 6 से 7 घंटे की नींद लाजमी है, क्यों मुहज्जब माशरों में लोग रात को 8 से लेकर सुबह 8 बजे तक नहीं किसी को फोन करते, नहीं मिलते? उन्होंने ये एडमिट कर लिया है कि ये आपकी सेहत का, आपके सोने का टाइम है, इसको नहीं डिस्टर्ब करेंगे। आप बाथरूम में और कोई पीछे से टक 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 करे और आप सोचे क्यों गई थी अंदर, क्या जरूरत थी अंदर जाने की, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, कोई कहता है? नहीं कहता। देखिए सीधी सी बात है, मैं तो बहुत सीधी बात करती हूँ, ये अलग बात है कि वो भी मेरी समझ ना आए। तो जब लोगों को हमने रियलाइज करा दिया कि ये 6 घंटे की नींद मेरा हक है, ये सारे दिन में 1 घंटा मेरा वॉशरूम का लगा लीजिए, और खाना भी मैं खाती हूँ, कभी किसी को हुआ कि कोई खाना खा रहा हो तो उसका शौहर आके कि खाना क्यों खा रही हो, इतना क्यों खाती हो, बैठ के क्यों खा रही हो, साथ काम क्यों नहीं कर रही, मैं बुला रहा था तुम खाना छोड़ के क्यों नहीं आई, लोग क्यों, ओ अच्छा खाना खा रहे, नहीं, खा लो, लेट फिनिश कहते ना। ये रियलाइजेशन अपने इस 4 घंटे को दे दें। 4 घंटे तो आपने रखा है, अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, बड़े बोल से लब जाए, क्योंकि जो कहती हूँ वो आगे आता है। मैं कहती हूँ 25 घंटे की कमिटमेंट अल्लाह ले ले 24 की बजाय, मैं उसको रियलाइज कराऊंगी, मैं अपने शौहर को भी कराऊंगी, मैं बच्चों को भी, कि ये 24 घंटे में से 25 लगा लें, यानी मुबालगे की हद तक बात कर रही हूँ। आप उनको 4 घंटे का आदि कर लेंगे, वो कहेंगे ठीक है, आप 24 का, लेकिन फला तत्गो, حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بیلنس رکھیے، لائف سٹائل ہی وہ بنا لیں اپنے گھر میں، نکالیں وہ ساری چیزیں جو آپ کا وقت ضائع کرتی ہیں اور آپ کے میاں کہتے ہیں گھر گندا ہوتا ہے، پھینک دیں ان چیزوں کو، میں کہتی ہوں جن چیزوں کو اٹھانے کا وقت نہیں آپ ان کو کسی کو دے دیں، جن کپڑوں کے گھر میں پھیلاوے کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں ان سارے کپڑوں کو طے کیجیے اور اپنا چوائس بنا لیجیے کہ میں نے جو دھونا ہے وہ پہننا ہے اور ختم، نہیں سمجھے؟ اور واللہ ہی میں نہیں کہتی کہ آپ سارے کپڑے پھینک کر بھی ایکٹیو ہو جائیں گے، اگر آپ سست ہیں آپ پھر بھی نہیں کچھ کریں گے، اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ٹیپ ٹاپ کے ساتھ گھر دیکھے، یقین نہیں آتا کہ یہ ایک عورت نے چلایا ہوا ہے، اتنے سلیقہ شوہر، اتنے ماشاءاللہ اچھے طریقوں سے جانے والے، اور ہر جگہ وہ ٹھیک ٹھاک ٹیشن مشن، اور کچھ ہم جیسے وہ گھول گھال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مہمان آنے والے ہیں تو کام ہی نہیں ہو رہا، بیلنس لے کے آئیے زندگی میں، اس میں پھر جذبات کا بیلنس، سونے جاگنے کا بیلنس، اور پانچ وقت کی نماز کو وقت پہ پڑھ لیجئے، آپ کی ساری زندگی بیلنس ہوگی، پھر اسی میں یاد رکھیے جو معاملات اور اخلاق پہ اتنی لمبی بات کر رہی ہیں نا، معاشرت میں اللہ کے نبی نے عملی تعلیمیں دیں، معتدل اور صحیح راستہ، دوستی چار چھ لفظ لکھ لیجئے، آپ کو انشاءاللہ کوڈ ورڈ مل جائیں گے کہ یہ معاملات کا اور زندگی کا اور دین کا توازن کیسے، نمبر ایک دوستی، نمبر دو دشمنی، نمبر بولے بغیر آگے بولوں گی، نرمی گرمی، غصہ بردباری، کنجوسی اور سخاوت، ایک طرف قصب معاش اور ایک طرف ترک دنیا، ایک طرف اللہ پر توکل اور دوسری طرف تدبیر ہے، ایک طرف خود اسباب کو جمع کرنا اور اس کے دوسری طرف مسبب الاسباب پہ نظریں رکھنا، ان سارے جوڑوں میں بیلنس کر لیجئے، سمجھ آئی؟ دوستی دشمنی میں عدل پہ رہیے، نرمی گرمی میں عدل پہ رہیے، غصے میں اور بردباری میں عدل پہ رہیں، کنجوسی اور سخاوت میں بیلنس رکھیے، اپنے لیے مال کمانے میں اور ترک دنیا پہ رکھیے، کیا پتہ چلا کہ جب معتدل راستے پہ آپ صراط مستقیم پہ چلیں گے ایسے مسلمانوں کی ترقی سے دنیا ان کو روک نہیں سکی، اور انہی کو اختیار کرنے سے پھر انسان ایک مکمل انسان بنتا ہے، لکھ لیجئے کہ استقامت سے ذرا سا گرنا معاشرے میں کئی خرابیاں پیدا کرتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں خلاصے میں کہ استقامت ایک جامع لفظ ہے، دین کے تمام اجزاء ارکان اور اس پر صحیح عمل اس کی تفسیر ہے، حضرت سفیان بن عبداللہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا مجھے اسلام کے بارے میں ایک جامع بات بتا دیں، میں بہت ساری نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنا بھی نہ پڑے، تو آپ نے کیا کہا تھا، معروف روایت ہے کئی بار آپ نے سنی بولی ہوگی، قل آمنت باللہ ثم استقیم، اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اس پہ جم جاؤ، یہ مسلم کی روایت ہے، عثمان کہتے ہیں، عثمان بن حاضر ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت ابن عباس کے پاس حاضر ہوا اور اس کے مجھے کوئی وصیت کیجئے، آپ نے فرمایا علی کا بھی تقوی اللہ، اللہ کے تقوی کو خوب لازم پکڑ لو، بل استقامتی اور استقامت کو، اور اتبی ولا تبتدی، اور اس راستے کی پیروی کرو جس کا شریعت نے حکم دیا، اور کوئی بدعت ایجاد نہ کرو، اور ایک جملہ بڑا بڑا لکھ لیں، نماز پڑھنی آسان پر مستقل نماز پڑھنی مشکل، روزہ رکھنا آسان پر مستقلاً روزے رکھنا مشکل، اسی طرح اس دنیا میں سب سے دشوار کام استقامت ہے، بلکہ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ استقامت کا مقام کرامت سے بھی اوپر ہے، کرامت دکھانا آسان لیکن دین کے کاموں میں استقامت اختیار کرنا یہ مشکل، کوئی بندہ اگر استقامت کے ساتھ دین کے کامات کو لا رہے نا عمل میں، ساری زندگی اس سے کوئی کرامت نہ بھی صادر ہونا تو والا درجے کا ولی ہے، عبداللہ بن عباس نے کہا کہ پورے قرآن میں اللہ کے نبی پر اس ایک آیت سے بڑھ کر کوئی آیت شاق نہیں گزری، کیوں؟ صحابہ کرام نے جو سوال کیا تھا، جو پیچھے بات کی، تو وہ اسی آیت کی طرف اشارہ تھا کہ مجھے ہود اور اس کی بہنوں نے بڑا کے، ایک تو اس صورت میں پچھلی قوموں پر عذابوں کی وجہ سے، اور دوسرا فاستقم کما امرت، تو آپ کو مجھے اللہ کے نبی کے عمل سے دکھ رہا ہے، ایک طرف بیٹی جان غنیم ہے اور بدر کا سفر ہے نہیں رکے، ایک طرف نواسا جان غنیم ہے اور دین کا کام ہے وہ نہیں چھوڑا، اور ایک طرف تبوک کا سفر ہے اور دوسری بیٹی ہے، یعنی نبی نے ولا تطغوا پہ عمل کر کے دکھایا، और हदीस में आता है जब आप अपनी बीवियों के पास होते थे ऐसे लगता था इनसे ज़्यादा अजीज़ आपको कोई नहीं। इतने में हैया अल सलाह हैया अल फलाह की आवाज़ आती, अजवाज कहती हैं कि अल्लाह के नबी हमारे पास से यूं गुजर जाते जैसे हमें जानते नहीं। ये है फस्तकीम कमा उमिरता। बीवी की मोहब्बत में फजर चली गई, बीवी की मोहब्बत में ईशा चली गई, ये जायज़ नहीं है। बाकी आपको अल्लाह ने आज़ादी दी है, आप अल्लाह के हुक्मों को माने और यकीन करें इस्तकामत के नतीजे में ज़िंदगी खूबसूरत है। आप अपनी पर्सनैलिटी से अपने इर्द गिर्द वालों को बता दें आई एम मैन ऑफ द वर्ल्ड, चले वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, मैं जो कहूँगी वो करके दिखाऊंगी। हम कहते कुछ हैं, धमकी इतनी बड़ी देते हैं, बाद में भीगी बिल्ली बन जाते हैं। और बड़ी बड़ी बातें ना करें, करके दिखाएं, इसके ऊपर अमल कर लीजिए, आप देखिए कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। और ये जो आगे लफ्ज़ है ना वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू, ये कौन लोग हैं जो आपको मुझे मकसद से रोकते हैं, जो हमें अपनी जन्नत से रोकते हैं? वो छोटी छोटी बातों पे हमें कहते हैं इधर आओ, छोड़ो ना, शॉपिंग कर लो, आज इधर चलो। मोहब्बत में कभी वो लौमत लाइम वाली कैफियत वाले कैफियात में आ जाते हैं। इसी पे कहते हैं कि जालिमों से दोस्ती ना करो, इनका कहना ना मानो, उनकी तरफ मिलान ना रखो, इनके तौर तरीकों को पसंद ना करो, इनके कहने पर दीन में सुस्ती ना इख्तियार करो। इकरमा कहते हैं जालिमों की सोहबत में ना बैठो। बिजावी कहते हैं शक्लो सूरत और फैशन और रहन सहन में इनका इत्तबा करना इसी से इधर रोका गया है। आप एक एक लफ्ज़ की दसियों तफसीरें पढ़ सकते हैं, बात बोझल हो जाती है। लेकिन ज़रूरत है इस बात की कि हम सब अपने आप को देखें, मैं अपने आप को, आप अपने आप को, कमी किस चीज़ की है। तो इस तकाम हम कितने नेकी के काम शुरू करते हैं फिर अधूरे। हम कितनी दफ़ा कहते हैं कि अब मैंने तहज्जुद नहीं छोड़नी, फिर वो रमज़ान के 2-4 दिन बाद फिर ख़त्म। मैंने पीर जुमेरात का रोज़ा रखना है फिर जुड़ जाता है, मैंने यामे 20 के रोज़े रखने हैं फिर जुड़ जाते हैं, मैंने गीबत नहीं करनी आज के बाद फिर कर जाती हूँ, मैंने ताना नहीं देना फिर दे देते, मैंने फालतू नहीं बोलना मैं बोल जाती हूँ। आप नोट कर लें, हर गुनाह के पीछे इस्तकामत की कमी है। मैं नहीं मानती कि कभी हम में से किसी ने ये कहा हो कि मैंने कोई नेकी नहीं करनी। नीयतें करते हैं फिर बदल जाती हैं, इरादे करते हैं टूट जाते हैं। और आप देखें नबी सल्लम की शख्सियत में ये चीज़ आप देख लें, जो कह दिया सो कह दिया, जो बात कर दी वो कर दी। एक से साहब से सौदा करके गया, कहा कि मैं पैसे लेके आता हूँ, चला गया, भूल गया होगा बेचारा हमारी तरह, खड़े हैं खड़े हैं। एक दिन गुजर गया, कहते हैं अगला दिन आया तो अल्लाह के नबी को वहीं खड़ा पाया। अरे आप क्यों इधर? कहा तूने कहा था मैं आऊँगा, शर्मिंदा हो गया, भूल गया था। कहा सिर्फ नमाज़ों और अपनी ज़रूरियात के लिए गया हूँ, फिर आके बैठ जाता हूँ कि शायद तो किसी वक्त भी आ जाए। तो ज़रूरत है इस बात की कि अल्लाह हमें इस्तकामत है। देखिए चीज़ की वैल्यू उसकी ड्यूरेबिलिटी के साथ है, खूबी है कि नहीं। आपको ये टेबल बड़ा अच्छा लगा है, सादा सा है, लेकिन आपने रख लिया इधर, क्यों? इस्तकामत है इसमें। इसकी जगह फैंसी झूलता झालता बहुत झालरें लगा टेढ़ा मेढ़ा ऊपर मोती सितारे लगे, आप उस टेबल को रखें और मैं इधर रख के टेबल पे अपना लैपटॉप रखूं और वो हिले, मैं नहीं रखूंगी। पक जाए, जम जाए। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू वबशिरू बिलजन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। अभी लास्ट वीक भी माशाल्लाह एक कोर्स पूरा हुआ है ऑनलाइन का, मैंने उनके साथ सेशन में पुराने कुछ आईडीज़ को देखा तो मैंने वहाँ ये जुमला शेयर किया था, शायद आपको कभी मौका मिला हो, कि आज तकमीले कुरान पे कौन बैठे हुए हैं। आप अपने ऊपर भी लीजिए, आप तो अभी 13वें पारे पे, अभी आप में से भी बहुत ने झड़ना है और अल्लाह ना करे आप झड़ें। जब दिन पहला होता है कितने लोग आते हैं किसी कोर्स में, वो लिस्टें गवाही देती हैं क़यामत तक देंगी कि ये नाम आया था इस कोर्स में, कि आज आप में से सारे वो साथी बैठे हुए इधर जो इस कोर्स के आगाज़ में आए थे। फर्स्ट तकीम का माँ उमेर था।